महाबंद पुस्तक छठवी लेक्चर नंबर 8। ओम नमः सिद्धेर्य, ओम नमः सिद्धेर्य, ओम नमः सिद्धेर्य, ॐ शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहूर्णं, भूतबलि प्रणीतं तं बन्धतत्त्वप्रकाशकं, महाधवलविख्यातं महाबन्धं नमामि। यह श्री भगवान भूतबलि भट्टारक प्रणीत महाबन्ध नाम का सिद्धांत शास्त्र है, जिसका दूसरा नाम है महाधवल। उसमें छठवीं पुस्तक में चौथा प्रदेश बंध अधिकार है, उसको देखते हुए भी हम आए हैं पृष्ठ संख्या 46 पर, 46। अभी अंतर की प्ररूपना चल रही है, तो उत्कृष्ट में हम देख रहे हैं। तो 6 कर्मों का उत्कृष्ट इसके लिए स्वामित्व देखना है तो 10वें गुणस्थान में होता है। 10वें गुणस्थान में हो सकता है उपशम हो या क्षपक श्रेणी हो, दोनों में ही उत्कृष्ट प्रदेश बंद होता है। तो 10वें में लगातार उत्कृष्ट नहीं होता, वहां अनुत्कृष्ट भी तो हो सकता है। तो जगन यंत्र एक समय के यानी जब उत्कृष्ट किया, अनुत्कृष्ट किया, फिर वापस उत्कृष्ट किया, तो जगन यंत्र एक समय का हो सकता है। और उत्कृष्ट करके नीचे के गुणस्थानों में आए और अर्धपुद्गल परावर्तन के पश्चात जब जाके क्षपक श्रेणी चढ़ी तब उनका उत्कृष्ट हुआ, तो इसलिए उत्कृष्ट अंतर अर्धपुद्गल परिवर्तन का। अनुत्कृष्ट के लिए अंतर तब कहलाएगा जब वो उत्कृष्ट कर रहा है या 11वें में बंध का स्वीकार नहीं है, इसलिए 11वें में इसलिए बंध ही नहीं हो रहा है। मोनी का उत्कृष्ट प्रदेश बंध तो हम देखते हैं कि नीचे के गुणस्थानों में होगा, जहां 7 कर्मों का बंध हो रहा है, भले मिथ्या दृष्टि या समय दृष्टि है, परंतु वह संगी पंचेंद्रिय कर रहा है पर्याप्त जी, इसलिए उसका अंतर कितना हो सकता है, तो जगन अंतर एक समय जब वो उत्कृष्ट कर रहा है तब जब अनुत्कृष्ट करके फिर वापस उत्कृष्ट होगा तो एक समय का अंतर होगा, और अनंत काल यानी एकेंद्रीय में चला गया, पंचेंद्रीय में रहा नहीं, तो उसका अनंत काल उसका उत्कृष्ट का उत्कृष्ट अंतर होगा। अनुत्कृष्ट के एक समय और उत्कृष्ट अंतर उपशम श्रेणी में, क्योंकि मुनि का बंध 9 तक है, 10-11 फिर 10 करके वापस आता है, तो वहां उत्कृष्ट अंतर्मूर्त होता है। आयु कर्म के लिए भी हमने देखा था उत्कृष्ट प्रदेश बंध का जघन्य अंतर एक समय है और उत्कृष्ट अंतर अनंत काल है, जो असंख्यात उद्गल परिवर्तन के लिए। देखो आयु कर्म का उत्कृष्ट प्रदेश बंध कब लिया था, देवायु और नरकायु के साथ पेज नंबर 14 पर हमने देखा था। नहीं, संगी पंजन मिथ्या दृष्टि या समय दृष्टि चारों गति का लिया था, उत्कृष्ट योग वाला है, बस इतनी बात थी। परंतु तो संगी पंचेंद्रिय है इसलिए हाँ, जब एकेंद्रिय में चला जाएगा तो उत्कृष्ट प्रदेश बंधन नहीं करेगा, उस अपेक्षा के असंख्यात उद्गल परिवर्तन का है। अनुत्कृष्ट प्रदेश बंध का जघन्यंतर एक समय जब वो उत्कृष्ट कर रहा है, या आयु ही नहीं बन रही है तो साधिक 33 अगर होगा। वंतर पूर्व कोटि पहले आयु बांधी है, देव में चला गया, देव में जाके लास्ट में या नरक में जाके लास्ट में उसने आयु बांधी, उसका विशेषांक हमने पढ़ा था। अब मार्गणाओं में हम देखने जा रहे हैं, नारकियों में ये उत्कृष्ट प्रदेश बंध का हम अंतर देख रहे हैं। सात कर्मों के यहाँ छह को अलग निकालना नहीं है, सातों की बात है, सारे संगी है, पंचेंद्रिय है, उत्कृष्ट योग के साथ उत्कृष्ट बंध होगा। उत्कृष्ट प्रदेश बंध का जघन्य अंतर एक समय है और उत्कृष्ट अंतर कुछ कम 33 सागर है, यानी वहां रहते हुए शुरुआत में एक बार उत्कृष्ट प्रदेश बंद किया और अंत में किया तो कुछ कम 33 सागर हो गया, क्योंकि पर्याप्त होने पर उत्कृष्ट प्रदेश बंद करेगा। अनुत्कृष्ट प्रदेश बंद का जघन्य अंतर एक समय है और उत्कृष्ट अंतर दो समय है। जब वो उत्कृष्ट कर रहा है लगातार तब अनुत्कृष्ट का अंतर दो समय होगा। आयु कर्म के उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेश बंध का जघन्य अंतर एक समय है और उत्कृष्ट अंतर कुछ कम 6 महीना प्रमाण है। अंतर घटित करना है इसलिए पहली बार और अंत में 8वीं बार आयु का बंध किया, क्योंकि नारकियों में रखना है ना, मार्गणा नहीं पलटते हुए दो बार आयु का बंध कराना है। इसी प्रकार सातों पृथ्वियों में जानना चाहिए। मात्र सात कर्मों के उत्कृष्ट प्रदेश बंध का उत्कृष्ट अंतर कहते समय वह कुछ कम अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण कहना चाहिए, मैं प्रत्येक नरक के वहां की जो आयु है उसको लेना है, उसमें कुछ कम कर देना। नारकियों में सात कर्मों का उत्कृष्ट प्रदेश बंध एक समय के अंतर से हो और कुछ कम 33 सागर के अंतर से हो यह संभव है, इसलिए इनमें उक्त कर्मों के उत्कृष्ट प्रदेश बंध का जघन्य अंतर एक समय प्रमाण और उत्कृष्ट अंतर कुछ कम 33 सागर प्रमाण कहा है, तथा इनमें सात कर्मों के उत्कृष्ट प्रदेश बंध का जघन्य काल एक समय काल की बात है और उत्कृष्ट काल दो समय होने से यहाँ इनके अनुत्कृष्ट प्रदेश बंध का जघन्य अंतर एक समय और उत्कृष्ट अंतर दो समय का। ये ख्याल में ये बात, जो उत्कृष्ट का काल है वो अनुत्कृष्ट का अंतर है। आयु कर्म के उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेश बंध का जघन्य अंतर एक समय है और उत्कृष्ट अंतर कुछ कम 6 महीना प्रमाण है यह स्पष्ट ही है, क्योंकि एक समय के अंतर से उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेश बंध हो यह तो ठीक ही है, साथ ही नरक में 6 महीना के प्रारंभ में और अंत में उक्त बंध हो और मध्य में न हो यह भी संभव है, इसलिए यह अंतर उक्त प्रमाण का है दोनों के लिए। ये नारकियों की बात हो गई। तीर्यंचों में सात कर्मों के उत्कृष्ट प्रदेश बंध का जघन्य अंतर एक समय है और उत्कृष्ट अंतर अनंत काल है, क्योंकि उत्कृष्ट प्रदेश बंध संघ ही पंचेंद्रिय करेंगे। जब वो एक इंद्रिय में चला जाएगा अनंत काल हो जाएगा, वो उसका अंतर पड़ेगा बीच। अनुत्कृष्ट प्रदेश बंध का जघन्य अंतर एक समय है और उत्कृष्ट अंतर दो समय है। ओग में हम जहाँ उपशम श्रेणी थी वहां अंतर्मुक्त अंतर देखा, क्योंकि वहां बंध ही नहीं हुआ। आयु कर्म के उत्कृष्ट प्रदेश बंध का अंतर ओग के समान है, यानी उत्कृष्ट का जघन्य अंतर एक समय है और उत्कृष्ट अंतर अनंत काल, जो तीर्यंचों में ही घटित हो सकता है। अनुत्कृष्ट प्रदेश बंध का जघन्य अंतर एक समय है और उत्कृष्ट अंतर साधिक 3 पल्य है, क्योंकि तीर्यंच में रहते हुए किसी तीर्यंच ने तिरंज आयु बांधी अने करोड़ पूर्व वाले तिरंज ने वंथड़ पूर्व कोटी पहले तिरंज आयु बांधी मरकर तीन पल्ले में भूमि में जन्म हुआ उसके अंत में जाके उसने देवायु बांधी। फोर्टी सेवन पेज तिरंज की बात चल रही है चौथी लाइन में यहाँ अंतर की बात अपनी चल रही है। पंचेन्द्रिय तिरंज त्रिक में तिरंजों में कहेंगे तो अनंत काल का अंतर हमने देखा था उत्कृष्ट पर अब पंचेन्द्रिय तिरंज त्रिक हमारी मार्ग है तो वहां अंतर के लिए उसकी काय स्थिति को सोचना पड़ेगा। सात कर्मों के उत्कृष्ट प्रदेश बंध का जघन्य अंतर एक समय है और उत्कृष्ट अंतर पूर्व कोटि पृथक को अधिक तीन पल्ले है। ये त्रिक है तो इसके प्रत्येक के पूर्व कोटि का यानी पृथक तो जो उसकी संख्या है वो अलग अलग होगी क्योंकि पंचेन्द्रिय इन जनरल कहने से 95 पूर्व कोटि और तीन पल्ले करते हैं। पंचेन्द्रिय तिरंज पर्याप्त कहने से वो बीच वाला एक वो नहीं लेना केवल संगी असंगी के लेना है 24 और 24 47 पूर्व कोटि और एक तीन पल्ले का भाव पर्याप्त में रखना और तिरंज योनिमति के लिए 8 और 8 लेना संगी असंगी के 15 पूर्व कोटि प्लस तीन पल्ले। अनुत्कृष्ट प्रदेश बंध का जघन्य अंतर एक समय है और उत्कृष्ट अंतर दो समय है। क्योंकि अनुत्कृष्ट का अंतर तभी हो सकता है जब वहां उत्कृष्ट का बंध हो या बंध ही न हो तो बंध ही न हो ये बात यहाँ संभव नहीं है। 47 पेज आयु कर्म के उत्कृष्ट प्रदेश बंध का भंग ज्ञानावरण के समान है क्योंकि आयु कर्म का भी उत्कृष्ट प्रदेश बंध कौन करता है तो संगी पंचेन्द्रिय करेगा एक समय के अंतर से भी कर सकता है और अनंत काल के अंतर से यानी जब एक केंद्र में चला जाएगा। सॉरी हाँ अभी अपनी मार्गणा पंचेन्द्रिय की चल रही बरोबर तो उसके काय स्थिति में उसका पूर्व कोटि पृथक को अधिक तीन पल ले जाए। यानी अभी हमने देखा ना सात कर्मों का अभी हमने क्या देखा पंचेन्द्रिय तिरंज त्रिक में सात कर्मों के उत्कृष्ट प्रदेश बंधे का जो अंतर चल रहा है। ये आप ठीक है पुस्तक में पहली बार आई थी तो यहाँ प्रदेश बंधे की बात चल रही थी अभी तक आप अनुभाग बंधे में थे कभी स्थिति बंधे में आते प्रदेश बंधे का संबंध है योग से तो समय दृष्टि या मिथ्या दृष्टि उस पर उसका प्रदेश बंध कितना होता है ये निर्भर नहीं है भले श्रेणी में भी क्यों ना हो जहाँ उत्कृष्ट योग है वहाँ उत्कृष्ट प्रदेश बंध होता है। कहीं पर भी मिथ्यात्व में भी हो सकता है ऊपर भी संगी पंचेन्द्रियों के ज्यादा होगा एक इंद्रियों के कम होगा उसमें भी उपपाद तीन प्रकार के योग होते हैं एक उपपाद यानी भव का पहला समय भले वो विग्रह गति में हो या वहाँ पहुंचा हो सबसे कम होता है। अभी उनमें भी अगर कंपैरिजन करेंगे तो सूक्ष्म निरोध लब्धि अपर्याप्त का उपपाद योग सबसे मिनिमम पॉसिबल है जैसे अन्य अन्य मार्गणाओं में द्विंद्रिय आदि में अधिक अधिक हो पंचेन्द्रियों में सबसे अधिक हो परंतु उसकी भी अपनी अपनी रेंज है। अब बाकी रहते हैं तो दूसरे समय से लेकर शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने के एक समय पूर्व तक उसको कहेंगे एकांत वृद्धि वाला योग एक होता है उपपाद भव के पहले समय में शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने के पूर्व समय तक एकांत वृद्धि वाला योग है एकांत वृद्धि योग बाद में जो होता है उसका नाम है घोलमान उसी को घोटमान भी कहेंगे उसी को परिणाम योग भी कहेंगे तीन नाम है उसके यहाँ सर्वत्र घोलमान या घोटमान शब्द है हमने उसको परिणाम योग घोटमान या घोलमान कहीं कहीं घोटमान लिखा है कहीं घोलमान लिखा है इसी पुस्तक में प्राकृत में तो घोड़ा मान ऐसा लिखा है, तो उसका दोनों प्रकार से ट्रांसलेशन करते हैं। इसका मीनिंग है उपपाद योग या भव का पहला समय। एकांत विद्या ने उस योग तो पढ़ता ही चला जाता है स्टीप राइज उसमें। उसके बाद शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने पर ये घोटमान योग शुरू होता है। पहले समय में भले वो कम है, परंतु बाद में क्या होता है, वो कभी कम होता है, कभी अधिक होता है, कभी उतना का उतना रहता है। ये सारे वेरिएशन गोलमान में ही शक्य है। आयु का बंध ये गोलमान योग में होगा, एकांत वृद्धि यानी शरीर पर्याप्ति पूरी होने के वहां तो नहीं होगा। केवल लब्धि अपर्याप्त जीव है उनके तो कैसे होगा, तो 2/3 आयु चली जाती है तब तक उनका एकांत वृद्धि है। अब जो 1/3 बाकी है तब आयु का बंध होगा और वहां पर उसका आयु के योग्य जघन्य बंध भी वहां पर जघन्य की बात। अब यहां तो बात उत्कृष्ट और जघन्य कैसे सोचना है, तो यहाँ मूल प्रकृतियों की बात चल रही है। तो मूल प्रकृतियां कितनी है, तो 8 है। तो 8 का जब बंद हो रहा है तो सबके खाते में थोड़ा थोड़ा आएगा। तो जब मिनिमम पॉसिबल कर्म बंद रहे तब उसमें मैक्सिमम पॉसिबल प्रदेश बंद होगा, क्योंकि जो प्रदेश बंद होता है एक समय प्रबद्ध वो 8 में डिस्ट्रीब्यूट होगा या 7 में होगा जब आयु का नहीं बंद हो रहा है। तो 10वां गुण स्थान ऐसा है वहां मोहनीय का भी बंधन नहीं है। हम देखते ना सूक्ष्म लोग है मोहनी का बंधन नहीं है, तो वहां 6 कर्म बनते। तो इन 6 कर्मों में उत्कृष्ट प्रदेश बंध 10वें गुण स्थान में पाया जाता है। और मोहनी में कहीं पर भी पहले से लेकर 9वें तक जहां योग ज्यादा है, परंतु कंडीशन क्या है, संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त होना चाहिए। उन जीवों के योग जब उत्कृष्ट होगा, उसमें भी रेंज है ना योगों की, तो उत्कृष्ट योग होगा
कहां पर भी हो सकता है ना,
कहीं पर भी समय दृष्टि हो मिथ्या, पर वो संगी होना चाहिए पंचेंद्रिय और पर्याप्त होना चाहिए इन कंपैरिजन। तो इसलिए उसका वहां योग मैक्सिमम होता है। तो ये हमने योग में अभी हम उत्कृष्ट की बात करेंगे, जब जघन्य का बात आएगा तब मैं जघन्य को समझाऊंगी आपको। तो उत्कृष्ट योग में हमने देखा था अंतर की प्ररूपना चल रही है अभी, यानी उत्कृष्ट योग किसके होता है, तो संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त के होता है। तो किसी जीव ने उत्कृष्ट योग किया तो 6 कर्मों का उत्कृष्ट कहाँ होता है, तो 10वें में होता है। तो 10वें में लगातार उत्कृष्ट नहीं होता, 10वें गुणस्थान का अंतर्मूर्त काल है, 1 या 2 समय में मैक्सिमम उत्कृष्ट हो सकता है, उससे अधिक नहीं।
अंतर फिर वापस कभी किया
फिर एकदम, तो 10वें गुणस्थान में रहते हुए उत्कृष्ट किया एक समय के लिए, फिर अनुत्कृष्ट किया और फिर उत्कृष्ट किया, तो एक समय का अंतर पड़ सकता है। और अधिक से अधिक उत्कृष्ट किया, फिर उपशम श्रेणी उतरा और फिर अर्धपुद्गल परिवर्तन काल के बाद फिर किया, तो इतना उत्कृष्ट अंतर हो सकता है। देखो उसको ये पढ़ो, यहाँ पर ये अंतर की प्ररूपना हम देख रहे थे। ओग की बात 45 पेज से शुरू हुआ, नीचे से दूसरी लाइन, 6 कर्मों के उत्कृष्ट प्रदेश बंध का अंतर काल कितना है, जघन्य अंतर एक समय और उत्कृष्ट अंतर कुछ कम अर्ध पुद्गल परिवर्तन प्रमाण है। ये उत्कृष्ट की बात है। अब अनुत्कृष्ट का अंतर कब होता है, जब उत्कृष्ट हो रहा है तब अनुत्कृष्ट का होगा या बंध ही नहीं होना चाहिए। तो यहाँ 11वें गुण स्थान को उन्होंने बंध नहीं है ऐसा कंसीडर किया, वैसे वहां 7 वेदनी का बंध है, तो पूरे का पूरा जो है समय प्रबद्ध उसी में जाता है, तो उसमें कुछ हीनादिक कहने की वहां जरूरत नहीं, इसलिए 11वें को कंसीडर नहीं करेंगे। तो अनुत्कृष्ट का अंतर कब होगा, या तो उत्कृष्ट कर रहा है तब, या तो 11वें में जाएगा तब, अदरवाइज वो अनुत्कृष्ट उसका चलता ही रहेगा। इसलिए अनुत्कृष्ट का अंतर देखो 46 पेज पर, अनुत्कृष्ट प्रदेश बंध का जघन्य अंतर एक समय है, यानी जो सूक्ष्म सांप्राय में है और एक समय के लिए वो उत्कृष्ट कर रहा है, तब अनुत्कृष्ट का एक समय वाला अंतर होगा। और उत्कृष्ट अंतर अंतर्मूलत है, ये 11वें गुणस्थान की अपेक्षा, ये अपना हुआ था, मगर अभी आप आई हो और डायरेक्ट अंतर में बैठी हो ना, तो समझ में तो चाहिए क्या हो रहा है। अब मोहनी का कहाँ होता है बंद, तो नीचे के गुणस्थानों में संगी पंचेंद्रियों के। तो मोहनी के उत्कृष्ट प्रदेश बंध का जघन्य अंतर एक समय कहीं पर भी कर सकते ना, जहाँ योग ज्यादा हुआ उत्कृष्ट प्रदेश बंद किया, एक समय के लिए अनुत्कृष्ट होकर फिर उत्कृष्ट किया, तो एक समय का अंतर होगा। और अन्यथा कैसे होगा, उत्कृष्ट का उत्कृष्ट अंतर कितना होगा, वही जीव एक इंद्रिय में चला जाएगा तो असंख्यात पुद्गल परावर्तन तक उसने उत्कृष्ट किया ही नहीं, तो उत्कृष्ट का उत्कृष्ट अंतर अनंत काल। अब अनुत्कृष्ट का देखेंगे, अनुत्कृष्ट का अभी मोहनीय के लिए अनुत्कृष्ट का अंतर कैसे हो सकता है, तो एक समय जब वो उत्कृष्ट कर रहा है या दूसरी अपेक्षा लगाए तो बंद ही नहीं कर रहा है, तो नौवे तक बंद है मोहनीय का, दसवें में नहीं, ग्यारहवें में नहीं, फिर वापस लौट कर दसवें में नहीं, तो अंतर्मूर तक का उसका अंतर पड़ सकता है अनुत्कृष्ट का। जघन्य अंतर एक समय और उत्कृष्ट अंतर साधिक 33 अगर्य, सॉरी 33 महीने आयु की बात पड़ी, अनंत काल। उत्कृष्ट के लिए मैंने कुछ घोटाला किया, फिर मैं पढ़ती हूँ, नहीं नहीं मैं इसमें से कुछ पढ़ रही हूँ और बोल कुछ है। मोहनीय के लिए वो जब बंधन नहीं कर रहा है, तो बंधन नहीं कर रहा है तो उत्कृष्ट प्रदेश बंध का जघन्य अंतर हो गया, उत्कृष्ट अनंत काल। हम अनुत्कृष्ट का देख रहे थे, एक समय और अंतर्मुख, 10, 11 और फिर 10। अब आयु कर्म की बात है, अब आयु कर्म का उत्कृष्ट पोटेंशियल, जब जब आयु बन रही तब 8 कर्म तो बंद ही रहे, उत्कृष्ट प्रदेश बंद कौन करेगा, तो संगी पंचेंगे, क्योंकि उसका योग ज्यादा होता है, इसलिए संगी पंचेंद्र जो पर्याप्त जीव आयु कर्म का बंद कर रहे हैं तो उसका उत्कृष्ट होता है। परंतु आयु कर्म का बंधन अंतर्मूर्त तक है, उत्कृष्ट एक या दो समय के लिए होगा, तो उत्कृष्ट का अंतर कितना होगा, तो मिनिमम एक समय का होगा, एक समय के लिए अनुत्कृष्ट किया वापस उत्कृष्ट किया। और उत्कृष्ट अंतर कितना होगा, वो एक इंद्रिय में चला जाएगा तो उत्कृष्ट बंद करेगा ही नहीं, तो अनंत काल है, जो असंख्यात पुद्गल परिवर्तन। अब अनुत्कृष्ट का कैसे सोचना आयु के बारे में, आयु बांध रहा है, एक समय के लिए उत्कृष्ट किया फिर अनुत्कृष्ट, तो एक समय का अंतर हुआ, अनुत्कृष्ट का जघन्य अंतर एक समय हुआ। उत्कृष्ट अंतर कैसे कि उसने आयु ही नहीं बांधी और फिर वापस बांधी, यानी वंतर पूर्व कोटि पहले उसने आयु बांधी 33 अगर की, भले वो देव की हो या नारकी की हो, और 33 अगर के अंत में जाके उसने आयु बांधी, कौन सी बांधी है हमारे यहाँ मूल प्रकृति में उसको नहीं सोच रहे, बस आयु का बंधन। इस तरह से हमने ओघ में देखा, उसके बाद हमने नारकियों में भी देख लिया, नारकियों में तो कोई बस 7 कर्मों का बंधन होगा या 8 कर्मों का होगा, वहां तो न कोई श्रेणी है, तो हमें ओघ की अपेक्षा जो सोचा है वो यहाँ लागू नहीं होगा। और नारकियों में यहाँ पर भी जैसे ओघ में एक इंद्र में चला जाता है उत्कृष्ट बंद नहीं करते, तो सारे संगी पंचेंद्र है, तो उत्कृष्ट प्रदेश बंद का जघन्य अंतर एक समय है, यानी योग किया उत्कृष्ट योग, उसका उत्कृष्ट प्रदेश बंद हुआ, एक समय के लिए अनुत्कृष्ट करके वापस उत्कृष्ट हुआ। और उत्कृष्ट अंतर कुछ कम 33 अगर है, कुछ कम इसलिए किया पर्याप्त होने पर उसका उत्कृष्ट हो सकता है, मैंने पर्याप्त होते एक बार उत्कृष्ट किया और अंत में आयु के अंत में जाके किया। अनुत्कृष्ट का कैसा होगा, जब वो उत्कृष्ट कर रहा है एक या दो समय,
दो समय कैसा,
उत्कृष्ट लगातार 2 समय तक हो सकता है, इसलिए उत्कृष्ट अधिक काल तक नहीं हो सकता, मैक्सिमम उत्कृष्ट का उत्कृष्ट योग 2 समय तक ही रह सकता है। आयु कर्म में भी नारकियों में आयु तो 6 महीना पहले बनती है और बनती तो अंतर्मूर्त तक बंधेगी, तो उत्कृष्ट का मिनिमम अंतर 1 समय होता है, अनुत्कृष्ट का भी मिनिमम अंतर 1 समय होता है, और उत्कृष्ट अंतर कुछ कम 6 महीने, 2 बार आयु बांधना है उसको, अनुत्कृष्ट के लिए भी उत्कृष्ट के लिए, यानी पहली बार और 8वीं बार,
दो उत्कृष्ट
के बीच में। इसी प्रकार 7 पृथ्वियों में जाना, ये तो हमने देखा। अब तीर्यंचों में हम देख रहे थे अभी, तो तीर्यंचों में भी 7 कर्मों का उत्कृष्ट प्रदेश बंद कौन करता है, तो संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त करता है, एक समय के अंतर से भी कर सकता है। और उत्कृष्ट अंतर कितना होगा, यदि वो एक इंद्रिय में चला जावे असंख्यात बुद्ध पर पड़ जाए। अनुत्कृष्ट का जब वो उत्कृष्ट कर रहा है तो एक समय होगा या दो समय होगा। आयु कर्म के उत्कृष्ट प्रदेश बंध का अंतर ओघ के समान है। ओघ के समान इसलिए है यहाँ पर भी तीन इंच में वो एक इंद्रिय में जाता है और असंख्या पुद्गल परिवर्तन तक रह सकता है। यानी उत्कृष्ट का जघन्य अंतर एक समय होगा और उत्कृष्ट का उत्कृष्ट अंतर असंख्या पुद्गल परिवर्तन। अब अनुत्कृष्ट का जघन्य अंतर एक समय है और उत्कृष्ट अंतर साधिक तीन पल्ले। ओघ में हमने कैसा देखा था, वंथर पूर्व कोटि बांधकर वो तैतीस सागर में गया था, यहाँ तीरियंच में रखते हुए किसी तीरियंच ने वंथर पूर्व कोटि पहले बंद किया और तीन पल्ले में वहां जाके अंत में उसने देवायु बांधी, आयु बांधी। हमें तो कौन सी बांधी ये हमारा यहाँ का प्रयोजन नहीं, वो उत्तर प्रकृतियों में देखेंगे। उसके बाद पंचेंद्रिय तीरियंच त्रिक की बात चल रही। पंचेंद्रिय तीरियंच त्रिक यानी सामान्य पंचेंद्रिय, संगी असंगी दोनों आते हैं, पर्याप्त अपर्याप्त दोनों आते हैं। फिर पंचेंद्रिय तीरियंच पर्याप्त, वहां भी संगी असंगी आते हैं परंतु अपर्याप्त नहीं आते। फिर संगी फिर पंचेंद्रिय तीरियंच योनिमति यानी स्त्री वेद वाले पर्याप्त ही होते हैं। तो उनमें सात कर्मों के उत्कृष्ट प्रदेश बंध का जघन्य अंतर एक समय, एक समय के अंतर से दोबारा उत्कृष्ट कर सकता है। और उत्कृष्ट अंतर अभी यहाँ काय स्थिति प्रमाण लेना, पूर्व कोटि पृथक तो अधिक तीन पल्ले, क्योंकि शुरुआत में एक बार उसने पर्याप्त होने पर उत्कृष्ट बंध किया था और फिर बीच में अनुत्कृष्ट ही करता रहा, उत्कृष्ट किया ही नहीं, और अंत में तीन पल्ले के अंत में जाके उसने फिर उत्कृष्ट किया। यानी यहाँ वो यदि प्रशस्त यानी रेशा कौन सी है या उसके समय तो है कि नहीं है, मिथ्या दृष्टि ये कुछ नहीं सोचना है, बस योग के कारण वो उत्कृष्ट होता है। अनुत्कृष्ट प्रदेश बंध का जघन्य अंतर एक समय और उत्कृष्ट अंतर दो समय। आयु कर्म के उत्कृष्ट प्रदेश बंध का भंग ज्ञानावरण के समान, यानी अभी हमने जो सात कर्मों के लिए दिखाया था, हाँ यानी आयु कर्म का ये तो पंचेंद्रिय ही है, तो किसी ने आयु कर्म का उत्कृष्ट प्रदेश बंध कर दिया, संगी पंचेंद्रिय तीर्यंच ने आयु कर्म का उत्कृष्ट प्रदेश बंध किया, उसको तीर्यंच में ही रखना है पंचेंद्रिय तीर्यंच में। और फिर यहाँ जो आयु कर्म का उत्कृष्ट प्रदेश बंध तीर्यंचों में लिया है, कौन सी आयु बांध रहा है ये उसका चारों गति के जो बनते हैं इसे लिया
है
ना, उसको तो पंचेंद्रिय तीर्यंच में रखना है, पूर्व कोटि पृथक तो अधिक तीन पल्ले वाले, तो ज्ञानावरण के समान है। यानी शुरुआत में उसने आयु का उत्कृष्ट बंध किया था, फिर अनुत्कृष्ट करता रहा बीच में, और अंतिम भाव ने फिर उत्कृष्ट बंध किया। यहाँ तो स्थिति की बात नहीं लेनी है, प्रदेश बंध के लिए केवल योग की अपेक्षा लेना है। अब आयु कर्म का ही अनुत्कृष्ट प्रदेश बंध का जघन्य अंतर एक समय है, यानी जब वो उत्कृष्ट कर रहा है, या उत्कृष्ट अंतर उसने आयु नहीं बांध दी, ऐसा कब तक हो सकता है, तो साधिक तीन पल्ले यानी वंथर पूर्व कोटि प्लस तीन पल्ले, उसके अंत में जाके फिर आयु बांध। सामान्य तीरियंचों में यही अपेक्षा लगाई थी, ख्याल में आई, यहाँ तक देखो देखो किसी तीरियंच अनुत्कृष्ट का यानी उसने आयु ही नहीं बांध दी, ये कब होता है, पूर्व कोटि वाला तीर्यंश जब एक तृतीयांश बाकी थी आयु, तब आयु बांधी कहाँ की, भूभूमि वाले तीर्यंश की, तीर्यंश में से तीर्यंश में रखना, तो तीन पल्ले में लास्ट में जाके उसने आयु बांधी। अब पंचेंद्रिय तीर्यंश अपर ये हो गए ना, यहाँ तक हमने पढ़ा था। पंचेंद्रिय तीर्यंच अपर्याप्त कौन है, सात कर्मों के उत्कृष्ट प्रदेश बंध का जघन्य अंतर एक समय है और उत्कृष्ट अंतर अंतर्मूर्त है। हमें उसको पंचेंद्रिय तीन इंच अपर्याप्त में रखते हुए दोबारा उत्कृष्ट बंध कराना है। तो पंचेंद्रिय तीन इंच अपर्याप्त में रहने का उत्कृष्ट काल ही अंतर्मूर्त है, उसकी काय स्थिति है। अनुत्कृष्ट प्रदेश बंध का जघन्य अंतर एक समय है, उत्कृष्ट अंतर दो समय है। कि जब उत्कृष्ट लगातार दो समय तक करता है तब अनुत्कृष्ट का अंतर दो समय वाला होगा। अब आयु कर्म के उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेश बंध का जघन्य अंतर एक समय है। उत्कृष्ट अंतर अंतर्मुहूर्त प्रमाण है। उत्कृष्ट प्रदेश बंद के लिए वो तो उसकी काय स्थिति रहना, पहली बार और लास्ट बार उसने उत्कृष्ट प्रदेश बंद किया। अनुत्कृष्ट के लिए दो बार आयु बांधनी है तो दो भाव में लेना, वो भी अंतर्मुहूर्त घटित होगा। विशेषार्थ, अब ये जो हमने तिर्यंचों की बात पढ़ी थी उसको शुरू से फिर दोबारा समझाएंगे। तिर्यंचों में सात कर्मों का उत्कृष्ट प्रदेश बंध एक समय के अंतर से भी संभव है और अनंत काल के अंतर से भी संभव है, क्योंकि संगी पंचेंद्रिय का उत्कृष्ट अंतर अनंत काल प्रमाण है। यानी जब वो एक इंद्रिय में जाएगा तब, या असंगी में चला जाएगा, असंगी ने सभी आगे ना एक इंद्रिय से असंगी तक, इसलिए इनमें सात कर्मों के उत्कृष्ट प्रदेश बंध का जघन्य अंतर एक समय है और उत्कृष्ट अंतर अनंत काल प्रमाण है। अनुत्कृष्ट प्रदेश बंध का जघन्य अंतर एक समय है और उत्कृष्ट अंतर दो समय है। जिस प्रकार नारकियों में घटित करके बतलाए हैं उसी प्रकार यह अंतर यहाँ और आगे भी घटित कर लेना चाहिए। यानी जहां जहां अनुत्कृष्ट का अंतर बताएंगे तो बंद तो हो ही रहा है, तो जब उत्कृष्ट कर रहा है दो समय लगाता है तब उसका उत्कृष्ट अंतर होगा। ओग से आयु कर्म के उत्कृष्ट प्रदेश बंध का जो अंतर कहा है वह यहाँ बन जाता है। यानी अनंत काल हमने देखा था ना, इसलिए यह अंतर ओग के समान कहा है। अनुत्कृष्ट प्रदेश बंध एक समय के अंतर से भी होता है और पूर्व कोटि की आयु वाला जो तिर्यंच प्रथम त्रिभाग में आगामी भव की आयु बांधकर उत्तम भोग में उत्पन्न होता है और वहां छह महीना काल शेष रहने पर पुनः आयु बंध करता है। ये छह महीने के भी अंत में जाके आयु बंध करेगा, ये भी संभव है ना। उसके साधिक तीन पल्ले के अंतर से भी अनुत्कृष्ट प्रदेश बंध देखा जाता है, इसलिए यहाँ आयु कर्म के अनुत्कृष्ट प्रदेश बंध का जघन्य अंतर एक समय और उत्कृष्ट अंतर साधिक तीन पल्ले कहा है। आयु कर्म के अनुत्कृष्ट प्रदेश बंध का यह अंतर पंचेंद्रिय तिर्यंच त्रिक में भी घटित हो जाता है, इसलिए वह इसी प्रकार कहा है। इनकी उत्कृष्ट काय स्थिति पूर्व कोटि पृथक अधिक तीन पल्ले है, इसलिए इनमें आठों कर्मों के यानी आयु से उत्कृष्ट प्रदेश बंध का उत्कृष्ट अंतर उक्त प्रमाण कहा है, क्योंकि यहाँ अपनी अपनी काय स्थिति के प्रारंभ में और अंत में आठों कर्मों का उत्कृष्ट प्रदेश बंध हो और मध्य में न हो यह संभव है। इनमें आठों कर्मों के उत्कृष्ट प्रदेश बंध का जघन्य अंतर एक समय है, यह स्पष्ट ही है। जब वो अनुत्कृष्ट करके वापस उत्कृष्ट करेगा। पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्तकों की काय स्थिति अंतर्मूर्त है और इनमें आठों कर्मों का उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेश बंध यथा योग्य एक समय के अंतर से हो सकता है, इसलिए इनमें आठों कर्मों के उत्कृष्ट प्रदेश बंध का जघन्य अंतर एक समय है और उत्कृष्ट अंतर अंतर्मूर्त, क्योंकि पंचेंद्रिय तीन अपर्याप्त है, उसकी काय स्थिति अंतर्मूर्त तथा आयु कर्म के अनुत्कृष्ट प्रदेश बंध का जघन्य अंतर एक समय और उत्कृष्ट अंतर अंतर्मूर्त कहा है, शेष कथन स्पष्ट ही है। अब मनुष्य त्रिक में पंचेंद्रिय तिरियंच त्रिक के समान भंग है, इतनी विशेषता है कि सात कर्मों के अनुत्कृष्ट प्रदेश बंध का जघन्य अंतर एक समय है और उत्कृष्ट अंतर अंतर्मुक्त है। लक्ष्मी ये क्यों कहा याद है? अनुत्कृष्ट का अंतर नहीं, नहीं। पंचेंद्रिय है मनुष्य त्रिक में, हाँ हाँ, ग्यारहवे गुण स्थान यानी छह के लिए ग्यारहवा गुण स्थान, मोनी के लिए दस ग्यारह दो में, यानी एक अंतर्मुक्त का। ख्याल में मनुष्य में वो श्रेणी है, इसलिए वहां वो बात घटित होती है अनुत्कृष्ट के अंतर के लिए, अन्यथा जहाँ श्रेणी नहीं है अनुत्कृष्ट का उत्कृष्ट अंतर दो समय हो, हाँ, जब वो उत्कृष्ट करे। देवों में नारकियों के समान भंग है, हम गति मार्ग ना देख रहे हैं इसलिए नारकी के समान है, यानी वहां पर भी सातों कर्मों का बंध तो हो ही रहा है हमेशा और वही एक ही पर्याय में रहते हैं, तो उत्कृष्ट का अंतर कैसे कहेंगे एक समय का अंतर से, या उस पर्याय में रहते हुए पर्याप्त तो होने पर एक बार उत्कृष्ट किया और आयु के अंत में एक बार उत्कृष्ट किया, तो उनकी जो स्थिति है देवों की उससे कुछ कम कहेंगे, यानी सामान्य देवों में कुछ कम तैतीस सागर कहेंगे और अनुत्कृष्ट के अंतर के लिए एक या दो समय। इसी प्रकार सब देवों में जानना चाहिए, मात्र सात कर्मों के उत्कृष्ट प्रदेश बंध का उत्कृष्ट अंतर कुछ कम अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण जानना चाहिए, कुछ कम क्योंकि वो पर्याप्त होने पर उत्कृष्ट बंध करेगा। इसलिए विशेषार्थ स्वामित्व और काय स्थिति को देखते हुए मनुष्य त्रिक में पंचेंद्रिय तीरियंच त्रिक से कोई विशेषता नहीं होने से, यानी उसकी काय स्थिति पूर्वकोटि पृथक्व अधिक तीन बन जाए, पूर्वकोटि का यानी पृथक्व का प्रमाण अलग अलग है, कथन यही होगा। इसलिए आठों कर्मों के उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेश बंध का जघन्य और उत्कृष्ट अंतर पंचेंद्रिय तीरियंच त्रिक के समान कहा है। अनुत्कृष्ट का तो एक या दो समय ही होता है, परंतु मनुष्य त्रिक में उपशम श्रेणी की प्राप्ति संभव होने से इनमें सात कर्मों के अनुत्कृष्ट प्रदेश बंध का उत्कृष्ट अंतर दो समय के स्थान में अंतर्मुक्त प्रमाण बन जाता है। इसे इनमें सात कर्मों के अनुत्कृष्ट प्रदेश बंध के अंतर का अलग से उल्लेख किया। ख्याल में ये बात, देवों में सब कर्मों के उत्कृष्ट प्रदेश बंध का स्वामित्व नारकियों के समान है, यानी पर्याप्त जीव है और उत्कृष्ट योग वाला है, उत्कृष्ट प्रदेश बंध कर रहा है, बस इतनी उसकी अपेक्षा और कुछ नहीं। इसलिए इनमें आठों कर्मों के उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेश बंध का जघन्य और उत्कृष्ट अंतर नारकियों के समान कहा है, मात्र देवों के अवान्तर भेदों की भवस्थिति अलग अलग है, यानी उनका एक आयु का प्रमाण भवस्थिति, इसलिए इन भेदों में अंतर कहते समय सात कर्मों के उत्कृष्ट प्रदेश बंध का उत्कृष्ट अंतर कुछ कम अपनी अपनी उत्कृष्ट भवस्थिति प्रमाण जानने की अलग से सूचना की है। यानी हम ये काल और अंतर एक जीव की अपेक्षा बताई, अरे बाप रे एकदम काल प्रवृत्ति कहाँ से आई? यानी कितना गया पता है? जगन्य का अंतर नहीं पता है, जघन्य का अंदर छूट गया है और ये सभी मार्गणाओं की बात छूट गई है। यानी नाना जीवों की अपेक्षा डायरेक्ट काल प्रवण भंग विचय वगैरह सब चला गया, भंग विचय भागा भाग प्रमाण। जैसे हमने जगन्य का एक जीव की अपेक्षा काल देखा था, किसका हो ना, नाना जीवन की अपेक्षा बहुत सारा गया। नाना जीवन की अपेक्षा हम पहले क्या कहते, भंग विचय देखते, फिर भागा भाग देखते, अल्प उल्प देखे, प्रमाण देखते, वो सब नहीं नहीं, वो तो काल की बात है। अभी हम थोड़ा काल जगन्य का काल देखेंगे, फिर अंतर जानने की कोशिश करेंगे। देखो निकालो, आपने अभी जगन्य की बात नहीं सोची है ना, जहां से शुरू होता है ना वो 34 पेज। जगन्य का प्रकरण लिखा है तो जगन्य बंधन कौन करता है, तो हमने देखा था तीन योग में से उपपाद योग सबसे जगन्य होता है, और उसमें भी पंचेंद्रियों का उपपाद भी ज्यादा होगा, एक इंद्रियों से कम होगा। एक इंद्रियों में सूक्ष्म निगोद लब्धि पर्याप्त का सबसे कम होगा उपपाद वाला, तो भव का पहला समय उसका जगन्य। तो देखो हम काल देख लेते जरा कि ओ से सात कर्मों के जगन्य प्रदेश बंद का कितना काल है, एक जो की अपेक्षा बात है ना, तो जगन्य और उत्कृष्ट काल एक समय, क्योंकि भव का एक समय पहला समय तो एक ही हो सकता है, लगातार दो समय में कैसे जगन्य होगा, बस एक ही समय। और जगन्य प्रदेश बंद का जगन्य काल एक समय है। वो नाना जीवन की अपेक्षा, इन्हें बीच में बहुत सारा छूट गया है। अभी जब हमने उत्कृष्ट का अंतर देखा है तो थोड़ा जगन्य का अंतर सोचने की कोशिश करेंगे। कभी तो तेजल अभी आई है ना, इसलिए उसको काल बता रही हूँ पहले, अंतर की बताऊंगी। तो पहले मैं पहले जगन्य किसके होता है उसका स्वामी भी बताऊंगी और काल भी बताऊंगी। तो स्वामी हमने देखा सूक्ष्म निगोद लब्धि पर्याप्त पहले समय में, तो उसका समय तो एक ही होगा ना, एक जीव की अपेक्षा तो एक ही समय होगा। और जगन्य का जगन्य काल एक समय कम क्षुल्लक भोग, यानी वो पहला एक समय छोड़ दो तो एक समय कम क्षुल्लक भव, ये उसका अजगन्य का जगन्य काल, जगन्य काल। और उत्कृष्ट काल असंख्यात लोक प्रमाण है। अब जब हमको इसी के आधार से जगन्य का अंतर सोचना है भोग की अपेक्षा, तो किसी एक जीव ने जगन्य किया हो उपपाद में और फिर वो दूसरे भव में फिर उपपाद किया जगन्य, किसी निगोद ने जगन्य योग के साथ जगन्य प्रदेश बंद किया वो भव बताया और फिर उसने पहले समय में जगन्य किया, तो एक समय कम क्षुल्लक भव, इतना बीच में अंतर चला गया। जो अनुत्कृष्ट का जगन्य काल है, अनुत्कृष्ट ने अजगन्य का, जो अजगन्य का जगन्य काल है वो जगन्य का जगन्य अंतर है। फिर से अभी हम तो अभी तक हम उत्कृष्ट उत्कृष्ट कहते आए, अभी हमको जगन्य जगन्य सोचना है। किसी जीव ने जगन्य किया वो भव पूरा किया क्षुल्लक भवन, फिर जगन्य किया तो अंतर कितना पड़ा, एक समय कम क्षुद्र भव। अभी हमने यहाँ क्या देखा था, अजगन्य का जगन्य काल एक समय कम क्षुल्लक भोग ग्रहण प्रमाण, वो क्या होगा, जगन्य का जगन्य अंतर होगा। वह जघन्य का जो जघन्य काल है वो जघन्य का जघन्यांतर हुआ, बराबर। ये ख्याल में आ रही बात। अब हम जघन्य का उत्कृष्ट अंतर देखें, तो जघन्य का उत्कृष्ट अंतर देखो यहाँ पर, जो जघन्य का उत्कृष्ट काल है लगातार अजघन्य होता रहा, तो कहते उत्कृष्ट काल असंख्यात लोक प्रमाण है, अथवा कह के जगत श्रेणी के असंख्यात विभाग प्रमाण है, क्योंकि टोटल जो योग स्थान होते हैं वो इतने हैं, यानी वो जघन्य योग में आया ही नहीं, अन्य अन्य योग स्थानों में भटकता रहा, तो उसको कहेंगे जगत श्रेणी के असंख्यात विभाग, या दूसरा वहां असंख्यात लोक प्रमाण कह गए, दोनों ही मत है तो हम उसकी को उसी की अपेक्षा कहेंगे असंख्यात लोक कहेंगे कि जघन्य का उत्कृष्ट अंतर कितना है, तो असंख्यात लोक प्रमाण। अब आयु कर्म का जघन्य प्रदेश प्रदेश बंध कौन करता है, स्वामी को पहले देखते हैं। तो जो लब्धि अपर्याप्त जीव है वो मंथर आयु बाकी है तब पहले समय में आयु कर्म का जघन्य करता है, यानी एक ही समय तक करता है, बीच में तो नहीं करेगा, तो फिर दोबारा दूसरा भोग प्राप्त किया उसमें भी उसने वंथर वाक्य तप किया, तो पूरा क्षुद्र भोग प्रमाण बीच में का अंतर चला गया। अजघन्य प्रदेश बंध का जघन्य और उत्कृष्ट काल अंतर में होता है। अब अजघन्य के लिए आयु भोग की अपेक्षा बात करनी हमको, अजघन्य का उत्कृष्ट अंतर कितना होगा, जैसे हमने अनुत्कृष्ट का उत्कृष्ट अंतर देखा था कितना, आयु ही मान दी नहीं होगा ना, वंतर पूर्व कोटि और तैतीस, अभी हम यहाँ आते जो उन्होंने बताया है, यहाँ तो क्या है पहले नाना जीवों की अपेक्षा काल प्ररूपणा वो करते आए हैं और उत्कृष्ट की बात की होगी, तो उत्कृष्ट अभी यहाँ नाना जीवों की अपेक्षा कैसे सोचना है, अभी हम उत्कृष्ट उत्कृष्ट देखते आए ना, छह कर्मों का उत्कृष्ट कहाँ होता है, दसवें में होता है, किसी एक जीव ने किया उत्कृष्ट, फिर किसी दूसरे ने किया, तीसरे ने किया, तो संख्या समय हो सकता है, एक समय से संख्या समय, अनुत्कृष्ट प्रदेश बंध का जघन्य काल एक समय है,
ये तो होता है,
ये कौन सी प्रकृति की क्या बात पता नहीं कहाँ की और कौन सी मार्गणा में थी,
एक समय के लिए उत्कृष्ट
यानी वो पूरा ही छूट गया ना, इसलिए हम उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, हम डायरेक्ट जघन्य के ऊपर चले जाएंगे। अभी हम एक जीव की अपेक्षा जघन्य देख के आए, यहाँ नाना जीवों की अपेक्षा देखना है। जघन्य काल का प्रकरण है निर्देश दो प्रकार का है, ओव और आदेश। ओव से आठ कर्मों के जघन्य और अजघन्य प्रदेश बंध का काल सर्वदा है, क्योंकि जो अनंत जीव राशि है निबोध में, तो नाना जीव की अपेक्षा कोई ना कोई जघन्य कर ही रहा है। इसी प्रकार ओघ के समान सब अनंत राशि, जहां जहां ये अनंत राशि है वहां यही बात घटित होगी, सब एकेंद्रीय और पांच स्थावर का एक जीव में जानना चाहिए, इतनी विशेषता है कि पांच स्थावर यानी पृथ्वी का एक कहने से वो अपर्याप्त की राशि बहुत बड़ी है, इसलिए उनमें घटित होगा, परंतु बादर पृथ्वी का एक पर्याप्त, बादर जल का एक पर्याप्त, बादर अग्नि का एक पर्याप्त, बादर वायु का एक पर्याप्त, बादर वनस्पति प्रत्येक शरीर पर्याप्त जीवों में जघन्य प्रदेश बंध का जघन्य काल एक समय है। जघन्य प्रदेश बंध उनके अपने अपने उपपाद के एक समय में होगा और उत्कृष्ट काल आवली के असंख्यातवे भाग प्रमाण है, यानी कोई ना कोई जीव इन पर्याय में उत्पन्न होता रहा लगातार तो आवली के असंख्यातवे भाग प्रमाण होगा। अजघन्य प्रदेश बंध का काल सर्वदा है क्योंकि पर्याय जो है जीव समाज हमेशा ही पाए जाते हैं। ये कोई जीव उसमें उत्पन्न हुआ, फिर दूसरा कोई उसमें आके उत्पन्न हुआ, फिर तीसरा कोई आके, और ये कैसे लिया, एक एक कायिक को अलग लिया और वो भी बादर लिया और वो भी पर्याप्त लिया। अपर्याप्तों की संख्या बहुत ज्यादा है, सूक्ष्म की तो है ही है ज्यादा, इसलिए उसकी बात छोड़कर इनमें लगातार उसमें उत्पन्न होने वाले और केवल उत्पन्न होने वाले नहीं जगन्य योग के साथ उत्पन्न होना चाहिए, इसलिए वो अवली का असंख्या का भाग लिया। अजघन्य तो हमेशा ही पाए जाएंगे आयु कर्म के, इन्हीं मार्गणाओं में आयु कर्म के जघन्य और अजघन्य प्रदेश बंध का काल नारकियों के समान है। अभी नारकियों को कहाँ समझाया हमने, अभी तो देखो ओग में आयु का जघन्य कौन करता है तो आपने देखा था ना, गति अपर्याप्त वो शरीर पर्याप्त नहीं, वंतर बाकी तभी बाकी नहीं नहीं नहीं, वो ओग की बात तो हो गई थी उनकी, आठों कर्मों का सर्वदा लिया था, यहाँ बादर पृथ्वी का एक वगैरह उसमें चल रही बात। नारकियों में से बाहर निकलने वाले भी ये अंतर की अपेक्षा घटित होगा शायद, नाना जीवन की अपेक्षा अंतर देखते हैं जगन्य का। आगे है ना, इसमें भी जगन्य के प्रकरण है,
क्या पता हम लोग के अंतर के प्रयोग करते हैं जैसे नाना जी के
नहीं, नाना जी उनकी अपेक्षा काल की बात करते हैं। नारकियों के समान असंख्यात राशि वाली ऐसा ही कह दिया, क्योंकि समान बता तो दिया है परंतु हुआ है तो नहीं है। उत्तर प्रकृति में मिलेगा क्या? अच्छा ठीक है,
एक मिनट।
नहीं ऐसे शायद पढ़ेंगे थोड़ी देर में, पहले पढ़ लेते हैं क्योंकि बीच में बहुत सारा छूट गया ना, इसलिए कन्फ्यूजन नहीं जाना। देखो हम पढ़ेंगे यहाँ पर आयु कर्म के जघन्य और अजघन्य प्रदेश बंध का काल नारकियों के समान है। जैसे अनंत राशि में लगातार उसका बंद करने वाले हैं, वैसे इसमें कोई अंतर तो पड़ेगा, लगातार काल तो कह नहीं सकते, हो सकता है अगली काल संख्या तो अब इसमें भी हो
काल हो
जाए। वैकृत मिश्र कायोगी जीवों में सात कर्म, ये नाना जीवन की अपेक्षा बात चल रही है, सात कर्मों के जघन्य प्रदेश बंद का जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अवली के असंख्या पे भाग क्रमण। देखो यहाँ पर भी ऐसा सोचना है, वैकृत मिश्र का योगी ने देव या नारकी उनका जो पहला समय है, तो पहले समय में उपपाद योग लेना वहां पर वो जघन्य होगा। क्या हुआ आवाज कम हो गई? हेलो 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 आवाज आ रही है? देखो वैकृत मिश्र में जब नहीं आवाज कम हो गई, हेलो 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 हाँ, यानी वैकृत मिश्र का योगी में जन्म का पहला समय लेना, उपपाद वहां हो गया उसका, उसका जघन्य होगा, तो कोई एक जीव फिर दूसरा फिर तीसरा फिर चौथा, तो लगातार कितने आ सकते हैं, तो अवली के असंख्या होगा। अजघन्य प्रदेश बंद का जघन्य काल अंतर्मुहूर्त है, क्योंकि पहले ही समय में जघन्य है, एक जीव भी अंतर्मुहूर्त तक तो रहेगा कि नहीं रहेगा, तो हम ऐसा भी सोच सकते हैं कि एट ए टाइम बहुत सारे जीव आ गए और अंतर्मुहूर्त तक अजघन्य है। उत्कृष्ट काल पल्ले के असंख्यात विभाग प्रमाण है, यानी एक जीव आया अंतर्मुहूर्त तक रहा, उसके बाद दूसरे ने प्रवेश किया, उसके बाद तीसरे ने किया, एक जीव के लिए एक अंतर्मुहूर्त, तो आवली के असंख्यात विभाग के लिए कितना, ये त्रैराशिक है, उसका उत्तर क्या है पल्ले का असंख्यात विभाग
उसमें उत्पन्न हुआ
तो सबको तो जघन्य नहीं होगा, पहले समय में अजघन्य ही रहा थ्रू आउट, फिर दूसरा कोई आया अजघन्य किया, तीसरा कोई आया अजघन्य किया, वैकृत मिश्र में एक जीव की अपेक्षा तो अंतर्मुहूर्त रहेगा ही रहे। अपगत वेदी और सूक्ष्म सांप्राय संयत जीवों में उत्कृष्ट के समान भंग है, यानी किसी एक जीव ने वहाँ जघन्य कहीं पर भी, यानी उसका योग जघन्य होगा ना, ऐसा ही लेना ना, किसी एक समय में होगा जघन्य
और उत्कृष्ट का अंतर
यह अंतर की बात कहाँ है, जघन्य का काल चल रहा है और वो भी नाना जीवन की अपेक्षा,
असंख्या
समय होगा, कोई अवगत वेदी हुआ फिर दूसरा कोई हुआ फिर तीसरा कोई हुआ इस तरह से, और अजगण्य का तो अंतर्मूर्त होगा ना, वो भी संख्या अंतर्मूर्त ही हो जाएगी, जगण्य के लिए संख्या समय हो गए और बाकी अंतर्मूर्त होगा। उपशम सम्यक्व में सात कर्मों के जगण्य प्रदेश बंध का जगण्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल संख्या समय है। देखो इसके लिए आपको जरा मैं एक जीव की अपेक्षा स्वामी को बता, पहले समय में द्वितीय ऑप्शन के साथ देव में उत्पन्न होने वाले जीव लेने
और मधु से जाएगा।
देखो आपको 44 में अच्छा जीवन में पहले हम देख रहे थे ना उसमें स्वामित्व देखना 34 से देख रहे थे,
सेल्फ
पेज नंबर 28 उपशम सम्यक्त्व में सात कर्मों के जघन्य प्रदेश बंद का स्वामी कौन है। अब हमने देखा उपपाद में सबसे जघन्य होता है और उपशम समय तो प्रथम उपशम वाला तो मरता नहीं है, द्वितीय उपशम वाला मरकर देव होगा तो पहले समय में उसका जघन्य होगा। अन्यतर प्रथम समयवर्ती देव जघन्य योग वाला है, यानी वो श्रेणी में मरकर देव में जाने वाला ऐसा जो लेना है वो भी मर। तो ऐसे कितने जीव होंगे लगातार एक के बाद एक, तो संख्या समय एक समय से संख्या समय अभी जो हमने पढ़ा
संख्या समय
की यहाँ काल देखना है इसलिए संख्या समय जीव संख्या था इसलिए एक के लिए एक समय संख्या के लिए संख्या समय। देखो हम यहाँ देख रहे थे उपशम समय तो में देख रहे थे, देखो वो भी देख लो अपगत वेदी और सूक्ष्म सांप्रदाय ये 27 पेज पर है तीसरी लाइन अपगत वेदी जीव मेला सात कर्मों के जघन्य प्रदेश बंध का स्वामी कौन है। कोई भी होगा अपगत वेदी भोलमान जघन्य योग वाला, यानी योग में से जब कभी वो जघन्य कर रहा है तब की बात। और सूक्ष्म सांप्रदाय में भी ऐसा ही है, वहां छह कर्म बन रहे उनका जघन्य स्वामी वैसे समय। उपशम समय की बात हो गई, जघन्य प्रदेश बंधक का जघन्य काल एक समय, उत्कृष्ट काल संख्या समय और अजघन्य प्रदेश बंधक का जघन्य काल अंतर्मुख और उत्कृष्ट काल पल्ले के असंख्यात भाग प्रमाण। देखो जब अजघन्य कहेंगे ना तो प्रथम उपशम को लेना, फिर से 49 पेज पर चल रहा है उपशम समयत्व में सात कर्मों के जघन्य प्रदेश बंध का जघन्य काल एक समय है, ये देव में उपपाद लेना। इसलिए वहां एक समय और संख्या समय घटित होता है। अब अजघन्य की बात है, अजघन्य कहाँ होगा तो अन्य सभी उपशम समय दृष्टि प्रथम उपशम वाले भी लेना द्वितीय उपशम वाले भी लेना। तो प्रथम उपशम वाले जीव तो असंख्यात है ना, तो अजघन्य प्रदेश बंध का जघन्य काल अंतर्मूर्त कोई एक या अनेक जीव उपशम समय तो में अंतर्मूर्त तक रहेंगे और उत्कृष्ट काल पल्ले के असंख्यात भाग प्रमाण। ये सांतर मार्गणा है, कोई ना कोई एक जीव आया अंतर्मूर्त तक रहा, दूसरा आया अंतर्मूर्त तक रहा, तीसरा आया, ऐसे कितने होते हैं तो औली का संकट। इसलिए उत्कृष्ट काल पल्ले का असंख्यात भाग हो, यहां तक बात ख्याल में आई। इसी प्रकार परिमाण में यानी प्रमाण में जो असंख्यात राशियां हैं उनमें जघन्य प्रदेश बंध का जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवली के असंख्यात भाग प्रमाण है। अजघन्य प्रदेश बंध का काल अपने अपने प्रकृति बंध के काल के समान करना चाहिए, इसी प्रकार जो संख्यात राशियां हैं उनमें जघन्य काल एक समय उत्कृष्ट काल संख्यात समय है और अजघन्य प्रदेश बंध का काल अपने अपने प्रकृति बंध के काल के समान करना चाहिए, यानी वो प्रकृति कब तक बनती है तब तक उसको नाना जीवन की अपेक्षा कहेंगे। विशेषार्थ ओग से आठों कर्मों का जघन्य प्रदेश बंध सूक्ष्म एकेंद्रिय अपर्याप्त जीव के यथा योग्य समय में योग्य सामग्री के मिलने पर होता है, यानी जब उसका योग जघन्य है वगैरह वगैरह उपपाद वाली बात है। यथा ऐसे जीव निरंतर पाए जाते हैं, अतः ओग से जघन्य प्रदेश बंध का काल सर्वदा कहा है। तो आठों कर्मों में यथा योग्य समझना, उपपाद में तो सात कर्म लेना और आयु का तो लभ्य पर्याप्त के वंथड़ बाकी है तो पहले समय में होता है। वही तो उसकी जो कंडीशंस है वो उसकी सामग्री है। सात कर्मों के लिए उपपाद कहेंगे, आयु के लिए वंथड़ बाकी है तब कहेंगे। तथा ओग से अजगन्य प्रदेश बंध का काल सर्वदा ही स्पष्ट ही है। सब अनंत राशियों में एकेंद्रियों में और पांच स्थावर कायिकों में इसी प्रकार अपने स्वामित्व को जानकर आठों कर्मों के जघन्य और अजघन्य प्रदेश बंध का सर्वदा काल ले आना चाहिए। बादर पृथ्वी का एक पर्याप्त आदि पांच कायिक जीवों में उनकी उत्पत्ति और स्वामित्व को देखकर सात कर्मों के जघन्य प्रदेश बंध का जघन्य काल एक समय यानी उपपाद वाला पहला समय उत्पन्न होने का और उत्कृष्ट काल आवली के असंख्या के भाग प्रमाण कहा है, क्योंकि अलग अलग जो एक एक समय के लिए करेंगे आवली का समय। इनमें सात कर्मों के अजघन्य प्रदेश बंध का काल सर्वदा है यह स्पष्ट ही है, क्योंकि हमेशा रहने वाली मार्गना है। आगे असंख्यात संख्या वाली राशियों में काल का निर्देश किया है, उसमें नारकियों का समावेश है ही, अतः उसे ध्यान में रखकर यहाँ बादर पृथ्वी का एक पर्याप्त आदि में आयु कर्म के जघन्य और अजघन्य प्रदेश बंध के जघन्य और उत्कृष्ट काल के जानने की सूचना की है। उसके बारे में कुछ कहा नहीं, केवल जानने की सूचना की है। वैकृत मिश्र का योग में जो असंगी मरकर नरक में और देवों में उत्पन्न होता है, अच्छा उसके प्रथम समय में जघन्य अनुभाग होता है, यानी वो असंगी है ना, वो तो उसके जघन्य होगा असंगी के योग्य होगा। ऐसे जीव लगातार कम से कम एक समय तक और अधिक से अधिक आवली के असंख्या पे भाग प्रमाण काल तक ही उत्पन्न होते हैं, अतः इस योग में सात कर्मों के जघन्य प्रदेश बंध का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अवली के असंख्यात भाग प्रमाण कहा। ये ख्याल में आई बात, क्योंकि उपपाद लेना है ना, एक एक समय वाला लेना, प्रत्येक युवा उत्पन्न होते समय ले लिया। तथा इस योग का जघन्य काल अंतर्मूर्त है, कौन सी बात चल रही है, वैकृत मिश्र, यानी एक जीव का एक अंतर्मूर्त होगा, एक या अधिक जीव आए भी तो अंतर्मूर्त, बाद में उसमें गैप पड़ने वाली है इसलिए अंतर्मूर्त लिया। और उत्कृष्ट काल पल्ले के असंख्यात पे भाग प्रमाण, यानी एक जीव आया उसने वो वैकृत मिश्र पार किया, फिर दूसरा आया, फिर तीसरा आया, अवली का असंख्या पे भाग, तो एक एक के लिए अंतर्मूर्त, तो सबके मिलकर पल्ले का असंख्यात भाग। अतः इसमें सात कर्मों के अजघन्य प्रदेश बंध का जघन्य और उत्कृष्ट काल क्रम से उक्त प्रमाण कहा है, उक्त काल प्रमाण करा। उपशम सम्यक्त में अजघन्य प्रदेश बंध का जघन्य और उत्कृष्ट काल वैकृत मिश्र कायोग के समान ही घटित कर लेना चाहिए, क्योंकि उपशम सम्यक्त ये भी सांतर मार्गना है, वो लगातार रहेगी तो पल्ले के असंख्यात भाग प्रमाण काल तक रहती है, एक जीव अंतर्मूल तक, तो अवली के असंख्यात भाग जीव पल्ले के असंख्यात भाग काल तक रहते हैं, इसलिए कहा ना इन मार्गणों का काल समान है। किंतु अभी अजघन्य के पहले बताई, अब जघन्य की बात करें, किंतु उपशम सम्यक्त के साथ मरकर देव होते हैं, यानी द्वितीय उपशम के साथ समझ, क्योंकि प्रथम उपशम में तो कोई मरता ही नहीं है। उनके ही सम्यक्त में सात कर्मों का जघन्य प्रदेश बंद होता है। ऐसे जो कम से कम एक समय तक और अधिक से अधिक संख्या समय तक ही मरकर उत्पन्न होते हैं, क्योंकि द्वितीय उपशम के साथ मरकर जाने वाले को संख्या की होगी। अतः इस सम्यक्त में सात कर्मों के जघन्य प्रदेश बंद का जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल संख्या समय कहा है, शेष कथन स्पष्ट ही है। एक ख्याल में ये बात नाना जी उनकी अपेक्षा काल की बात देख रहे थे। अब अंतर जो है, नाना जी उनकी अपेक्षा अंतर होगा। देखो ये पहले जो पेज निकाला था 14 नंबर पर था ना, कहाँ पर था वो, जहाँ सारी प्ररूपणाएं लिखी थी, नहीं तीन चार पेज पर होगी, तीन नंबर पर होगा। देखो क्या क्या हमारा छूट गया है, हम विशेषार्थ में है ना, तेजल तीसरी लाइन विशेषार्थ की, एक युग की अपेक्षा काल हम देख रहे थे पहले आए तभी, उसमें उत्कृष्ट का देखा जगन ने तो उसमें सब गायब है, नहीं अंतर देख रहे थे काल ने, आप अंतर की बात आई ना, अंतर में आए थे, एक युग की अपेक्षा अंतर देख रहे थे। उसके बाद सन्निकर्ष छूट गया है, नाना जीवन की अपेक्षा भंग विचय नहीं है, भागा भाग नहीं है, परिमाण नहीं है, क्षेत्र नहीं है, स्पर्श नहीं है, काल के दो लाइन खाली रह गई है, अंतर और भाव हम देख रहे हैं और अल्प बहुत और आएगा 24 नंबर का। नहीं नहीं वो अंतर प्ररूपना तो नाना जीवन की अपेक्षा अंतर है 22, और हम थे 14 नंबर पर, तो 14 से डायरेक्ट 21 और 22 आ गए, यानी बीच में इतने सब छूट गए। कितना बड़ा छूट गया, यानी मूल प्रकृतियों का ये सन्निकर्ष वगैरह सब ले चला गया। अब अंतर को देखेंगे 50 पेज पर, यानी प्रकृति बंद की 22 नंबर की प्ररूपना होगी बराबर। अब अंतर दो प्रकार का है, जघन्य और उत्कृष्ट, ये नाना जीवन की बात चलेगी। अभी हमने एक जीव की अपेक्षा अंतर देखा था, उत्कृष्ट का प्रकरण है, निर्देश दो प्रकार का है, ओग और आदेश। ओग से आठ कर्मों के उत्कृष्ट प्रदेश बंध का अंतर काल कितना है हमने देखा, उत्कृष्ट प्रदेश बंध संगी पंचेंद्रिय के होता है पर्याप्त होंगे, ये उत्कृष्ट योग के साथ होता है। तो जघन्य अंतर एक समय, यानी नाना जी एक समय के अंतर से कर सकते हैं, और उत्कृष्ट अंतर जगत श्रेणी के असंख्यात में भाग प्रमाण है। ना ना ना, अन्य अन्य योग करता रहा, कोई जो जीव ने ये इसको किया ही नहीं। पहले हमने जैसे उत्कृष्ट स्थिति बंद अनुभव असंख्यात लोग देखते थे ना, वैसे एक प्ररूपणा एक उनकी अंतर में एक जीव की अपेक्षा उन्होंने बताया था असंख्यात लोग किया जगत श्रेणी के असंख्यात विभाग, वही बात यहाँ ले रहे। अनुत्कृष्ट प्रदेश बंद का अंतर काम नहीं है, यानी अनुत्कृष्ट तो सब लोग कर ही रहे। इस प्रकार इस बीज पद के अनुसार जिनका काल सर्वदा है उनमें अंतर काल नहीं है, तथा जिनका काल सर्वदा नहीं है उनमें उत्कृष्ट प्रदेश बंध का जघन्य अंतर एक समय है, और उत्कृष्ट अंतर जगत श्रेणी के असंख्यात भाग प्रमाण है। जिनका काल सर्वदा नहीं है ऐसा क्यों कहते हैं? जिन्हें उत्कृष्ट प्रदेश बंद नहीं कर रहे, बस इतनी बात है ना। अनुत्कृष्ट प्रदेश बंद का आठवें कर्मों का अपने अपने प्रकृति बंद के अंतर के समान अंतर करना चाहिए। विशेष सब योग स्थान जगत श्रेणी के असंख्यात भाग प्रमाण। यह संभव है कि नाना जीवों के जो योग उत्कृष्ट प्रदेश बंध में निमित्त है वह एक समय के अंतर से भी हो जावे और एक बार होकर पुनः क्रम से सब योग स्थानों के हो जाने के बाद हो गए। इसलिए यहाँ सब कर्मों के उत्कृष्ट प्रदेश बंध का जघन्य अंतर एक समय और उत्कृष्ट अंतर जगत श्रेणी के असंख्यात भाग प्रमाण कहा है। देखो स्थिति बंद के स्थान और अनुभव बंद के स्थान असंख्यात लोग थे, इसलिए उसमें इतना बड़ा अंतर भी था।
ये भी बहुत बड़ा
असंख्यात ही है ना, परंतु असंख्यात लोग बहुत ज्यादा है श्रेणी से। देखो ये श्रेणी का असंख्यात अभाव, इससे श्रेणी असंख्यात गुना, उससे लोक असंख्यात गुना, और उससे असंख्यात लोग असंख्यात लोग। श्रेणी को जगत प्रतर से गुणा करेंगे तो लोक होगा, असंख्यात गुणा ही हो जाएगा।
असंख्यात गुणा है नहीं, ये नहीं क्या बोल रहा हूँ कि अर्जुन के असंख्यात गुणा जो असंख्यात असंख्यात उससे श्रेणी का असंख्यात अभाव असंख्यात गुण है तो वो बहुत बड़ा कारण है।
हाँ है ना, इतने योग स्थान है तो अलग अलग योग स्थानों में चलता रहेगा तो इतना काल चला जाएगा बीच में। इसलिए यहाँ सब कर्मों के उत्कृष्ट प्रवेश बंध का जघन्य अंतर एक समय लास्ट लाइन और उत्कृष्ट अंतर जगत श्रेणी के असंख्यात भाग प्रमाण कहा है। और ऐसा ना जो उत्कृष्ट जो है ना वो कभी कभी हो गया, बीच वाले जो है मध्यम वाले वो बहुत बार हो गए, यानी उन्हीं स्थानों में बहुत बार पलटना होगा। नहीं समझे, एक होता है जघन्य स्थान और एक होता है एकदम टॉप मोस्ट उत्कृष्ट स्थान। तो मेजोरिटीली किसमें हो गए, मीडियम वाले स्थानों में ज्यादा बार आना जाना होगा, उत्कृष्ट की ओर और जघन्य की ओर कम बार होगा, ये बात कहना चाहिए। फिर भी इतने अंतर के बाद उत्कृष्ट के कोई ना कोई जीव तो उत्कृष्ट का करेगा ही करेगा। यहाँ नाना जीवों की अपेक्षा ये बात चल रही है। अभी हम 51 पेज पर आए, पहली लाइन, जीव राशि अनंत है अतः सब कर्मों के अनुत्कृष्ट प्रदेश बंध में अंतर पड़ना संभव नहीं है, इसलिए यहाँ इसके अंतरकाल का निषेध किया। आगे जिन मार्गणाओं का उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेश बंध का काल सर्वदा है उनमें अंतर घटित नहीं होता, किंतु जिन जिन मार्गणाओं में सर्वदा काल नहीं है जिसको हम सांतर मार्गणा कहते हैं उनमें उत्कृष्ट प्रदेश बंध का जघन्य और उत्कृष्ट अंतर ओग के समान बन जाता है। यानी जघन्य एक समय तो कहीं पर भी घटित होगा और उत्कृष्ट अंतर ओ के समान जो श्रेणी का असंख्यात भाग वो घटित होता है जगत श्रेणी। और अनुत्कृष्ट प्रदेश बंध का अंतर काल प्रकृति बंध के अंतर के समान प्राप्त होता है। उदाहरणार्थ नरक गति लीजिए, इसमें उत्कृष्ट प्रदेश बंध का काल सर्वदा नहीं है, इसलिए इसमें उत्कृष्ट प्रदेश बंध का जगन्य और उत्कृष्ट अंतरकाल उक्त प्रमाण प्राप्त होता
है।
एक समय से श्रेणी का संख्या तथा इसमें आयु कर्म के सिवा शेष कर्मों का सदा प्रकृति बंध होता रहता है। अतः अनुत्कृष्ट प्रदेश बंध का अंतरकाल नहीं प्राप्त होता, मात्र आयु कर्म का सदा बंध नहीं होता। अतः प्रकृति बंध के अंतरकाल के समान इसमें आयु कर्म के प्रदेश बंध का जघन्य और उत्कृष्ट अंतरकाल बन जाता है। इसी प्रकार सर्वत्र अपनी अपनी विशेषता को जानकर अंतरकाल ले आना चाहिए।
आयु में यहाँ पे उत्कृष्ट के लिए पीढ़ी का संख्या प्रभाव में है एक समय पर, और अनुत्कृष्ट के लिए कितना अंतर हो जाएगा?
कितना होता है? 24 मुहूर्त? 24 मुहूर्त होगा ना, नरकाय मनुष्य देवायु का 24 मुहूर्त था।
ये नारकी की बात है ना?
हाँ, नारकी भी
तो नारकी तो मनुष्य के लिए चाय बांधे गए, तो वहाँ पे भी वो 24 मुहूर्त है ना?
तिरियन चाय के लिए नहीं,
नहीं नारकी जो तिरियन चाय बांधे गए तो वहाँ पे अंतर कितना लेना है?
अभी इसमें भी आई थी ना अनुभाव के प्रकरण, पहले पुस्तक निकालनी पड़ेगी। आड़ा ही रखा है पहले नीचे ही के। जरा लेना पहले नाना जी उनके पीछे डायरेक्ट हम इंडेक्स ही देख लेते, पहले पुस्तक में मिलेगा। प्रकृति अपनी अपनी प्रकृति बंध बताए ना उन्होंने, भागा स्पर्श क्षेत्र परिणाम काल अंतर 28। नारकियों में मनुष्य और तिरियन चायु के बंधकों का जगन्य अंतर जगन्य से एक समय उत्कृष्ट से 24 मुहूर्त, ये मैं 24 मुहूर्त कह रही थी उत्कृष्ट, यानी वो तो अलग अलग नरकों में कैसे है? पहले में 48, हाँ वो 48 मुहूर्त पक्ष मास 2 मास 4 मास 6 मास 12 मास। ये प्रकृति बंध का अंतर समझ। ये इन जनरल 24 मुहूर्त बताएंगे। अजगन्य के लिए ये 3 बात बताई मिल जाएगी। ये जगन्य के लिए प्रकृति बंध के समान क्यों कहा उन्होंने? अजगन्य का होगा ना, उन्होंने केवल प्रदेश बंध का जगन्य और उत्कृष्ट अंतर बताया। एक समय से 24 मिनट होगा
ना,
हाँ जगन्य में भी वही होगा। जगन्य के लिए वो बहुत बड़ा अंतर पड़ेगा, किसी ने जगन्य किया नहीं ऐसा हो सकता है। यहाँ उत्कृष्ट की बात चल रही थी ना, जगन्य का प्रकरण तो बाद में लिया है। ज्ञान उत्कृष्ट के लिए हो गई। उत्तर प्रकृतियों में ये सब पूरा होगा तो ये ठीक हो मिलेगा अपने को। जघन्य का प्रकरण है, मिला आगे का पैराग्राफ पढ़ रही हूँ। इन्हें जघन्य प्रदेश बंद का नाना जीवों की अपेक्षा अंतर देख रहे हैं। निर्देश दो प्रकार का है, ओव और आदेश। ओव से आठों कर्मों के जघन्य और अजघन्य प्रदेश बंद का अंतर काल नहीं है। इस प्रकार अनंत राशि और असंख्यात लोक प्रमाण राष्ट्रों में जानना चाहिए। शेष राष्ट्रों का भंग उत्कृष्ट के समान है, यानी जगत श्रेणी का असंख्या का अभाव है। विशेषार्थ स्वामित्व को देखते हुए यहाँ ओग से और अनंत संख्या वाली व असंख्यात लोक प्रमाण संख्या वाली मार्गणाओं में आठों कर्मों के जघन्य और अजघन्य प्रदेश बंद का अंतरकाल नहीं प्राप्त होने से उसका निषेध किया है। किंतु स्वामित्व को देखते हुए शेष मार्गणाओं में अंतरकाल उत्कृष्ट प्ररूपना के समान बन जाता है, इसलिए इसे उत्कृष्ट प्ररूपना के समान जानने की सूचना की है। यानी वही सभी योग स्थान पलटा कर फिर आते हैं कोई तो जगत श्रेणी का असंख्यात भाग हो जाएगा। हम यही रुकेंगे।
नहीं
नहीं, यहाँ लिखा ना उत्कृष्ट में क्या लिखा है, हाँ उतना ही लेना। हम यहाँ जो लिखा है उसके अनुसार ही चलेंगे। जावानी के ज्ञान ते सूझे लोकालो सोवाणी मस्तक सदा देख।